एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पे बात करेंगे जो एक मशहूर शर्त से शुरू होती है, लेकिन हमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य के बारे में, मतलब सोचने के नए तरीके सिखाती है। किताब है पॉल साबिन की द बेट।
जी हाँ, द बेट, पॉल एरलिक, जूलियन साइमन एंड आ गैम्बल ओवर अर्थ्स फ्यूचर। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ एक शर्त की कहानी नहीं है, ये तो दो बड़े विचारों की कह सकते हैं टक्कर है।
हाँ, एक तरफ पॉल एरलिक जीव विज्ञानी, वो मानते थे कि भाई पृथ्वी के संसाधन सीमित है, आबादी बढ़ती रही तो विनाश होगा।
और दूसरी तरफ थे जूलियन साइमन, अर्थशास्त्री। उनका मानना था कि नहीं, इंसानी दिमाग, हमारी जो प्रतिभा है, वो ही सबसे बड़ा संसाधन है, हम हर मुश्किल का हल निकाल ही लेंगे।
और कमाल की बात देखिए, ये बहस आज भी मतलब उतनी ही गर्म है। क्या धरती की सच में कोई सीमा है
या फिर तकनीक हर समस्या का समाधान दे देगी?
ये सवाल आज भी हमारे सामने है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी होकर। तो चलिए इस दिलचस्प टकराव और इसके पीछे के विचारों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं आज।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले इसके लेखक पॉल साबिन, उनके बारे में जानना जरूरी है। वो येल यूनिवर्सिटी में इतिहास और अमेरिकी अध्ययन के प्रोफेसर हैं।
और यहाँ एक दिलचस्प बात है, मतलब साबिन ना तो एरलिक की तरह जीव विज्ञानी है, ना ही साइमन की तरह अर्थशास्त्री, वो एक इतिहासकार है। इसका फायदा ये है कि वो इस पूरी बहस को बाहर से देख पाते हैं, एक तटस्थ नजरिए से। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि देखो कौन सही था कौन गलत,
वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टकराव हुआ ही क्यों और इसका हम पर क्या असर पड़ा है आज तक।
सही। उनका काम पर्यावरण, राजनीति और कानून के इतिहास के आसपास ही घूमता है, तो वो इस शर्त को सिर्फ एक घटना नहीं मानते।
हाँ, वो इसे एक बड़ी कहानी के हिस्से की तरह देख रहे हैं कि कैसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लेकर ये दो बिल्कुल अलग अलग सोच समाज में इतनी हावी हो गई।
तो अगर संक्षेप में पूछें, ये किताब असल में है क्या?
ये बेसिकली आधुनिक अमेरिकी पर्यावरण बहस का एक इतिहास है, बौद्धिक भी और राजनीतिक भी, और इसे बताया गया है 1980 की उस मशहूर शर्त के जरिए, एरलिक और साइमन के बीच जो लगी थी।
अच्छा, तो इसका मकसद क्या है?
मकसद ये समझाना है कि दुनिया को देखने के ये दो एकदम अलग नज़रिए कैसे पनपे और कैसे इन्होंने हमें पर्यावरण के मुद्दों पर मतलब बांट दिया। एक नज़रिया एरलिक वाला जो कहता है पृथ्वी की एक वहन क्षमता है, एक लिमिट है,
और दूसरा साइमन वाला जो कहता है कि इंसान की बुद्धि और बाजार की ताकत वो असीमित है, हम हर कमी का हल ढूंढ लेंगे।
हाँ, और यहीं पे साबिन का मुख्य तर्क आता है। वो कहते हैं कि ये जो दोनों पक्ष है ना, एक तरफ वो डूमस्टर्स जो हमेशा कहते हैं सब खत्म होने वाला है,
और दूसरी तरफ बूमस्टर्स जो कहते हैं तरक्की की कोई सीमा ही नहीं है।
इन्होंने मिलकर एक झूठा द्वंद्व खड़ा कर दिया है, एक फॉल्स डाइकोटमी, जैसे कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा।
अच्छा, मतलब ये या तो ये या वो वाली स्थिति बना दी है।
बिल्कुल, और साबिन मानते हैं कि इस तरह दो खेमों में बढ़ जाने से, मतलब इस पोलराइजेशन से, हमारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हुई है।
कैसे?
इसने जटिल सच्चाइयों को आसान नारों में बदल दिया है, और जो असली पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए जो कारगर नीतियां बन सकती थीं उनमें रुकावट डाली है। ये किताब हमें इसी ध्रुवीकरण की कहानी सुनाती है।
चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला पड़ाव आता है विनाश के भविष्यवक्ता का उदय। ये पॉल एरलिक का दौर है।
हाँ, साबिन बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब खूब तरक्की हो रही थी अमेरिका में और दुनिया में, तभी चिंता के बीज भी पड़ रहे थे।
जैसे
रेचल कार्सन की किताब आई थी साइलेंट स्प्रिंग 1962 में, उसने औद्योगिक केमिकल्स के खतरों के बारे में बताया। बिल्कुल, वो एक बड़ा मोड़ था। फिर आए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी पॉल एरलिक, और ये बात दिलचस्प है कि तितलियों पर उनकी रिसर्च ने उन्हें इंसानी आबादी के बारे में बड़े और कह सकते हैं डरावने विचार दिए।
और 1968 में आई उनकी किताब द पॉपुलेशन बॉम्ब, वो तो जैसे एक धमाका ही थी।
हाँ, बहुत प्रभावशाली किताब थी वो।
उसने सीधे सीधे कहा, देखो बेतहाशा बढ़ती आबादी धरती की सहन शक्ति को तोड़ देगी, इससे भयानक अकाल पड़ेंगे, संसाधनों के लिए लड़ाई होगी, समाज टूट जाएगा।
इस किताब ने, और क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट थी लिमिट्स टू ग्रोथ, इन सब ने दुनिया भर में चिंता फैला दी। ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी बस एक बंद स्पेसशिप है जिसके संसाधन खत्म हो रहे हैं।
हाँ, एर्लिक का मूल विचार यही था कि पृथ्वी सीमित वहन क्षमता वाला एक परिमित अंतरिक्ष यान है। जनसंख्या वृद्धि का कैंसर निरंतर खपत के साथ मिलकर इन सीमाओं को तोड़ रहा है, मतलब सीधा विनाश का खतरा। क्या वाकई दुनिया ऐसे कगार पर खड़ी थी उस वक्त?
इसी माहौल में कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है, प्रचुरतावादी पलटवार, कॉनोकोपियन काउंटर अटैक, और इसके हीरो थे जूलियन साइमन।
अच्छा, ये अर्थशास्त्री थे?
हाँ, ये अर्थशास्त्री थे, और शुरू में तो वो एर्लिक की कुछ बातों से सहमत भी थे, लेकिन फिर जब उन्होंने लंबे समय के आंकड़ों को देखा, डेटा को देखा,
क्या पाया उन्होंने?
उन्होंने पाया कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद इंसानों का जीवन स्तर तो औसतन बेहतर ही हुआ था, चीजें सस्ती हुई थी। इससे उन्होंने उन स्थापित डराने वाले विचारों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।
हाँ, और उनकी सोच एर्लिक से एकदम उलट थी। उनकी किताब आई 1981 में, द अल्टीमेट रिसोर्स। उसका सार यही था कि भाई, असली संसाधन तो इंसान का दिमाग है।
उनका तर्क क्या था इसके पीछे?
तर्क ये था कि जैसे ही कोई चीज कम होती है, मान लो तांबा कम होने लगा, तो उसकी कीमत बढ़ती है। अब बड़ी कीमत लोगों को मोटिवेट करती है, या तो वो और तांबा खोजेंगे, या उसका इस्तेमाल कम करेंगे, या उसका कोई विकल्प, कोई सब्स्टिट्यूट बना लेंगे।
तो कमी अपने आप में ही समाधान पैदा करती है, ये कहना था उनका।
बिल्कुल, साइमन का मूल विचार यही था। परम संसाधन लोग हैं, कुशल, उत्साही और आशावान लोग। कमी कोई भौतिक सच्चाई नहीं, बल्कि एक आर्थिक स्थिति है जो मानव मन को नवीनता लाने और प्रचुरता पैदा करने के लिए प्रेरित करती है।
इस नजरिए से तो ज्यादा लोग मतलब ज्यादा दिमाग, ज्यादा समाधान। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये नजरिया उन चीजों को नजरअंदाज करता है जिनकी बाजार में कोई कीमत नहीं लगती, जैसे साफ हवा या जंगल या नदियों का पानी?
बिल्कुल सही सवाल है, और हम इस पर वापस आएंगे जरूर। साबिन यही दिखाते हैं कि कैसे साइमन के इस आशावादी बाजार केंद्रित संदेश को उस वक्त के रूढ़िवादी राजनीतिक आंदोलन ने हाथों हाथ लिया। वो लोग सरकारी नियंत्रण का विरोध कर रहे थे,
तो ये विचारों की लड़ाई अब राजनीतिक भी हो गई थी।
हाँ, और अब आता है तीसरा चरण, शर्त और सीधा टकराव। 1970 के दशक के अंत तक ये दोनों विचारक बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ 70s का ऊर्जा संकट था जिसने ओर्लिक की बातों को वजन दिया।
हाँ, तेल की कीमतें बढ़ गई थीं।
लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक हवा सरकारी नियमों के खिलाफ बह रही थी। रेगन का दौर आने वाला था। साइमन, जो ओर्लिक की बातों से बहुत चिढ़े हुए थे, उन्हें बार बार शर्त लगाने की चुनौती देते रहे पब्लिक में,
और ओर्लिक मान गए।
आखिरकार 1980 में एर्लिक और उनके कुछ साथियों ने चुनौती मान ली। उन्होंने 5 धातुओं पर, क्रोमियम, तांबा, निकल, टिन और टंगस्टन पर $1,000 का दाव लगाया।
शर्त क्या थी?
बिल्कुल, शर्त सीधी थी। 10 साल का समय, 1990 में अगर इन 5 धातुओं की कुल कीमत इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद बढ़ी हुई निकली, तो साइमन हारेंगे और एर्लिक को पैसे देंगे।
और अगर कीमत गिरी?
तो एर्लिक हारेंगे और साइमन को पैसे देंगे।
तो ये सिर्फ पैसों की शर्त नहीं थी, ये तो उनके पूरे वर्ल्ड व्यू की लड़ाई बन गई।
एकदम, एर्लिक के लिए बढ़ती कीमतें मतलब देखो संसाधन कम हो रहे हैं, साइमन के लिए गिरती कीमतें मतलब देखो इंसानी चतुराई जीत रही है। मीडिया ने भी इसे खूब उछाला, दो प्रोफेसरों के बीच एक रोमांचक मुकाबला।
ये अकादमिक बहस से बढ़कर कुछ बन गया था, जैसे अमेरिका की पर्यावरण और आर्थिक नीति की दिशा तय करने वाली लड़ाई हो।
हाँ, और फिर आया नतीजा, कहानी का अंतिम चरण, परिणाम और विरासत। अक्टूबर 1990, 10 साल पूरे हुए।
क्या हुआ?
नतीजा बिल्कुल साफ था, उन 5 धातुओं में से हर एक की कीमत 10 साल पहले के मुकाबले गिर चुकी थी।
हर एक की?
हाँ, हर एक की। साइमन शर्त जीत गए, ओर्लिक ने चुपचाप उन्हें ₹576.07 का चेक भेज दिया।
लेकिन सवाल ये है कि कीमतें गिरी क्यों? क्या सच में धरती पर संसाधनों का भंडार अचानक बढ़ गया था जैसा साइमन कह रहे थे?
यहीं पर सेबिन गहराई में जाते हैं। वो बताते हैं कि कीमतें गिरने की वजह काफी जटिल थी, ऐसा नहीं था कि अचानक सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया।
तो क्या वजह थी?
कई चीजें थीं, जैसे 1980 के दशक में एक वैश्विक मंदी आई थी, उससे धातुओं की मांग कम हो गई। फिर नई तकनीकें आ गईं जिनसे धातु निकालना और इस्तेमाल करना सस्ता हो गया।
अच्छा।
और कुछ मामलों में तो नए विकल्प आ गए, जैसे टेलीकॉम में तांबे के तार की जगह फाइबर ऑप्टिक्स ने ले ली। तो ये सिर्फ साइमन के इंसानी दिमाग की सीधी जीत नहीं थी, कई सारे फैक्टर्स थे।
बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात शायद यह है कि दोनों ने इस नतीजे को अपनी अपनी विचारधारा के चश्मे से देखा। साइमन ने कहा, देखो मैं सही था, ये मेरी सोच की पूरी जीत है।
और एर्लिक
ने कहा कि ये तो महज संयोग है, और ये शर्त असली पर्यावरणीय मुद्दों को तो छूती भी नहीं है, जैसे जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इन चीजों की तो कोई कीमत इन धातुओं में झलकती नहीं।
हाँ, वही बात जो आपने पहले उठाई थी, जिनकी बाजार में कीमत नहीं है।
जी,
और यही सैबिन अपना मुख्य तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि इस शर्त की असली विरासत, जो लेगेसी है, वो जहरीली थी।
जहरीली
कैसे?
क्योंकि इसने लोगों के दिमाग में एक झूठा विकल्प बना दिया कि या तो आप एर्लिक की तरह डूमस्टर हैं या साइमन की तरह बूमस्टर हैं। इसने बीच के रास्तों को जैसे बंद ही कर दिया।
बीच के रास्ते मतलब?
मतलब ऐसे रास्ते जहां हम बाजार की ताकत का इस्तेमाल पर्यावरण बचाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कार्बन टैक्स लगाना। साइमन का तर्क कुछ ऐसा है, मैं सार बता रहा हूं। एर्लिक और साइमन के बीच की ये जो ध्रुवीकृत बहस थी, इसने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक झूठा विकल्प बना दिया। उनकी ये मशहूर शर्त एक भटकाव थी जिसने असली चुनौती को धुंधला कर दिया।
और वो असली चुनौती क्या है?
चुनौती ये है कि बाजार की जो इनोवेशन की शक्ति है, उसका उपयोग उन वास्तविक पारिस्थितिक समस्याओं को हल करने के लिए कैसे करें जिन्हें बाजार की कीमतें खुद ब खुद हल करने में विफल रहती हैं।
तो ये बहुत अहम बात है। इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या मुख्य बातें निकलती हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात है ध्रुवीकरण का खतरा, द पेरिल ऑफ पोलराइजेशन। जब हम किसी भी जटिल मुद्दे को सिर्फ दो खेमों की लड़ाई बना देते हैं, या तो ये या वो, तो हम अक्सर सच से दूर हो जाते हैं।
एर्लिक साइमन विवाद ने यही किया।
हाँ, इसने बीच के रास्ते जहां शायद असली समाधान छिपे थे उन्हें बंद कर दिया, और आज भी हम कई बहसों में यही चीज देखते हैं, है ना?
बिल्कुल देखती हूँ। दूसरी बड़ी सीख क्या लगती है?
दूसरी है विचारधारा की अंधी शक्ति, द ब्लाइंडिंग पावर ऑफ आइडियोलॉजी। ये किताब दिखाती है कि कैसे हमारे गहरे विश्वास, हमारी आइडियोलॉजी, हमें सच को तोड़ मरोड़ कर देखने पर मजबूर कर सकती है।
जैसे एर्लिक शायद सिर्फ पारिस्थितिकी सीमाओं को देख रहे थे और इंसानी अनुकूलन क्षमता को कम आंक रहे थे।
हाँ शायद, और साइमन शायद सिर्फ बाजार और कीमतों को देख रहे थे और प्रकृति की सीमाओं को, या उन चीजों को जिनकी कीमत नहीं होती, उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। दोनों बुद्धिमान थे, पर अपनी अपनी विचारधारा के दायरे में कहीं ना कहीं कैद थे।
तीसरा अहम बिंदु,
तीसरा है बाह्यताओं की समस्या। ये शब्द थोड़ा तकनीकी है, पर इसका मतलब बहुत जरूरी है।
हाँ, समझाइए जरा।
साइमन का तर्क बाजार की कीमतों पर टिका था, लेकिन कीमतें अक्सर उन नुकसानों को नहीं दर्शाती जो हमारे कामों से पर्यावरण या समाज को होते हैं, जैसे फैक्ट्री के धुएं से हवा खराब होना या प्लास्टिक कचरे से नदियां प्रदूषित होना।
इनकी कोई कीमत बाजार में नहीं लगती।
सही कहा, पर इनका मूल्य बहुत ज्यादा है। साइमन का इन बाहरी लागतों पर ध्यान न देना, साइमन कहते हैं, उनकी सोच की एक बड़ी कमी थी। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी छिपी हुई लागतों के बारे में सोचते हैं?
जैसे ट्रैफिक जैम में फंसे होने का सिर्फ पेट्रोल का खर्च नहीं है।
हाँ, बल्कि समय का खर्च भी है, प्रदूषण का खर्च भी है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। और एक और बात जो मुझे इस कहानी से समझ आई, वो है राजनीति कैसे विज्ञान और अर्थशास्त्र को अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है।
हाँ, द कोऑप्टिंग बाय पॉलिटिक्स
कम करना चाहते थे। ये दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक या आर्थिक विचार भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं, और कई बार उनका असली मतलब थोड़ा बदल जाता है या खो जाता है।
तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं।
हाँ, क्या व्यवहारिक बातें हैं जो हम सीख सकते हैं? पहला कदम तो शायद है आलोचनात्मक सोच विकसित करना,
क्रिटिकल थिंकिंग।
कैसे?
मतलब जब भी मीडिया में या कहीं और दो पक्षों के बीच तीखी बहस देखें, तो थोड़ा रुककर सोचें, क्या ये वाकई सिर्फ दो ही पक्ष हैं? क्या कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है? इस तरह से बात को पेश करने से किसे फायदा हो रहा है? क्या वो सही सवाल पूछ रहे हैं?
ये जरूरी है।
दूसरा, शायद वैचारिक कट्टरता से बचना।
हाँ, मतलब किसी एक सोच से चिपक नहीं जाना।
बिल्कुल, व्यवहारिक और मिले जुले समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे पर्यावरण बचाने के लिए सिर्फ सरकारी नियम शायद काफी ना हो, और ना ही सिर्फ बाजार पे सब कुछ छोड़ा जा सकता है।
शायद दोनों का मिश्रण जरूरी है। जैसे आपने कार्बन टैक्स का उदाहरण दिया था, वो बाजार का इस्तेमाल करता है कीमत बढ़ाकर, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, एर्लिक का लक्ष्य।
सही। तीसरा, कीमत और मूल्य के बीच का फर्क समझना, ये बहुत जरूरी है।
हाँ, साइमन शर्त जीते क्योंकि धातुओं की कीमत गिर गई थी।
पर यह किताब हमें उन चीजों के मूल्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिनकी कोई बाजार कीमत नहीं है। साफ हवा, स्थिर जलवायु, जैव विविधता। जब हम ये फर्क समझते हैं तो शायद हमारी खरीदारी के फैसले, हमारे निवेश और पर्यावरण को देखने का नजरिया बदल सकता है।
और आखिर में शायद ज्यादा बेहतर संवाद करना सीखना।
हाँ, अर्लिक और साइमन की कहानी दिखाती है कि जब संवाद टूटता है, जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं तो क्या होता है।
मिलकर समाधान खोजने पर ध्यान दें, ना कि सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने पर।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से और इस किताब से सबसे बड़ा सबक यह है कि शायद हमारे भविष्य के लिए असली खतरा न तो संसाधनों की कमी है और न ही बेलगाम विकास।
तो फिर क्या है?
असली खतरा शायद वो सोच है, वो मानसिकता जो हमें दो खेमों में बांट देती है और हमें मिलकर समझदारी से समाधान खोजने से रोकती है। ये विनाश बनाम विकास की लड़ाई, ये एक भटकाव है, एक खतरनाक भटकाव।
मैं सहमत हूँ, ये किताब हमें उस या तो या वाली सोच से निकालकर दोनों ओर वाले नजरिए की तरफ ले जाती है। हमें ये मानना होगा कि हाँ, पृथ्वी की सीमाएं हैं, ये एर्लिक की सच्चाई है, और हमें उन सीमाओं के अंदर रहते हुए इंसानी दिमाग, तकनीक और बाजार की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। ये साइमन की सच्चाई है।
बिल्कुल, असली चुनौती पर्यावरण या अर्थव्यवस्था में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से ढालना है कि वो पर्यावरण की लंबी अवधि की सेहत का भी ख्याल रखें, दोनों साथ चलें।
तो पॉल सैबिन की द बेट सिर्फ एक शर्त की कहानी नहीं है, ये हमारी आज की कई बहसों की, कई गतिरोधों की जड़ों तक जाती है।
हाँ, ये हमें दिखाती है कि कैसे दो बहुत प्रतिभाशाली लोग भी अपनी अपनी विचारधाराओं में उलझकर एक ज्यादा बड़े सच को देखने से चूक सकते हैं और कैसे इसका असर हम सब पर पड़ता है। ये एक जरूरी किताब है आज के समय के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।